हरे कृष्णा। आज एकादशी है और शनिवार भी है, इसलिए शनिवार में जो भगवत गीता का श्लोक की चर्चा होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन हिंदी में। पांचवा अध्याय चल रहा है, तो हर बार की तरह हम पांचवे अध्याय के श्लोक साथ में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। योग इस पांचवे अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं 24वें श्लोक में, और इसके पहले 23वें में भी, कि कौन व्यक्ति है जो इस संसार के बंधन से मुक्त होने के लिए योग्य है। काफी कठिन योग्यता है। जैसे हम ये अध्याय पढ़ते हैं शायद हमें लगे कि ये हमारे बस की बात नहीं है, बहुत मुश्किल है। काम से मुक्त होना, क्रोध से मुक्त होना, इन इंद्रियों के वेगों को दमन करना, ये सब बहुत कठिन लग रहा है। इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं श्री कृष्ण इस 25वें अध्याय में, और आगे चल के बता रहे हैं कि जो मुक्त पुरुष हैं उनके क्या लक्षण होते हैं, क्या गुण होते हैं। तो आइए पढ़ते हैं 25वां श्लोक। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम् ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणम् ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत हैं, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित हैं, वे ब्रह्म निर्वाण या मुक्ति को प्राप्त होते हैं। कृपया दोहराइएगा, यह श्री कृष्ण चार लक्षणों का या योग्यताओं का वर्णन कर रहे हैं। किस व्यक्ति के लिए? लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम्। ब्रह्म मतलब परम सत्य, निर्वाण मतलब मुक्ति। जो परम सत्य में मुक्ति प्राप्त करने के लिए योग्य व्यक्ति है, लभन्ते प्राप्त करना। ऋषयः, जब तक आदमी व्यक्ति ऋषि नहीं होता, साधु नहीं होता, तब तक वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। ऋषि का मतलब ये नहीं कि कोई अपना कुटुंब छोड़ के हिमालय में चले जाए। यहां ऋषि शब्द का अर्थ है जो अपने अंदर आनंद की अनुभूति कर रहे हैं, जो बाहर सुख की खोज में नहीं लगे हुए हैं, ऐसे लोगों को ऋषि कहते हैं। न कि कोई व्यक्ति जंगल में रह रहा है, जटाएं हैं, रुद्राक्ष की माला है और वह ऋषि हो गया, नहीं। जो अपने अंतःकरण में भगवान के ऊपर ध्यान करता है, भगवान का चिंतन मनन करता है, वो सच्चा ऋषि है। और ऐसे चिंतन मनन से, सेवा से क्षीण कल्मषाः, कल्मष मतलब अंदर की जो भी धूल है, पाप है, क्षीण, सब नष्ट हो जाते हैं। छिन्न द्वैधा, जो द्वंद्वों से उत्पन्न होने वाले संशय हैं, उनको उन्होंने काट दिया है। छिन्न द्वैधा, ये संसार की पहचान है कि ये द्वंद्वों से भरा हुआ है। लेकिन जो व्यक्ति द्वंद्वों से परे होकर परम सत्य में स्थित हो जाता है, वही केवल मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। यथात्मानः, जो आत्म साक्षात्कार के कार्य में लगा हुआ है। और आखिरी बात बताते हैं श्री कृष्ण, सर्वभूत हिते रताः। सर्वभूत, भूत मतलब प्राणियां, सारे प्राणियों के हित के कार्य में रत है, लगा हुआ है, युक्त है उस कार्य में। श्री प्रभुपाद जी एक सुंदर बात बताते हैं तात्पर्य में, कि कृष्ण भक्त के अंदर स्वाभाविक तौर से ये चारों गुण के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। हालांकि भक्त इनके लिए अलग से प्रयत्न नहीं करता है, परंतु ये सारे गुण उसके अंदर आ जाते हैं। श्रीमद् भागवत में बताया जाता है कि देवताओं के सारे अच्छे गुण ऐसे व्यक्ति में आ जाते हैं जो कि श्री कृष्ण की सेवा करता है। यहां पर ऐसे गुणों का वर्णन है जिससे हमें लगे कि शायद हमारे लिए संभव नहीं है, लेकिन जब हम श्री कृष्ण की सेवा करते हैं तो श्री कृष्ण की कृपा से सबसे कठिन कार्य बहुत सुलभ हो जाता है, और भगवान की कृपा के बिना आसान से आसान कार्य भी असंभव हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है, सर्वभूत हिते रताः, केवल वास्तव में जो दूसरों का कल्याण चाहता है और दूसरों के कल्याण के कार्य में लगा हुआ है, जिसके हृदय में बिल्कुल कोई स्वार्थ नहीं है, वही सच्चा मुक्त पुरुष है। श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि दुख का मूल कारण है कि हम भगवान श्री कृष्ण को भूल चुके हैं, और इसकी वजह से हमें अलग अलग तरह के शरीर धारण करने पड़ते हैं और हम जन्म मृत्यु के चक्कर में अटक जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति का कल्याण हमें करना है तो केवल उस व्यक्ति को हमें श्री कृष्ण का स्मरण पुनः दिला दिया तो वो मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ता रहेगा। ये देह यही हमारे सारे दुखों का कारण है, और जब व्यक्ति मुक्त हो जाएगा इस देह से, लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम, और भगवान के धाम को प्राप्त करेगा, हमेशा के लिए दुखों से वो मुक्त हो जाएगा। तो ये सच्चा परम कल्याण का मार्ग है। जो व्यक्ति केवल शरीर की सहायता करने में रत रहता है, वो कल्याण का कार्य ज्यादा समय तक टिकता नहीं है। दूसरे अध्याय में प्रभुपाद जी एक दृष्टांत देते हैं कि अगर कोई व्यक्ति डूब रहा है और हम पानी में कूदते हैं, लेकिन उस व्यक्ति को बचाने के बजाय केवल उसका जो कोट है, उसकी कमीज है, वो उतार के हम ले आते हैं और बड़े खुशी से कहते हैं कि देखो बचाया बचाया, तो दूसरा आदमी बोलेगा अरे क्या बचाया तुमने, केवल कमीज बचाया, आदमी तो डूब गया। ठीक उसी तरह से अज्ञानवश ये सारी दुनिया केवल शरीर के कल्याण के कार्य में लगी हुई है, और लोग सोचते हैं कि शरीर का कल्याण करना ही ये धर्म है, ये भगवान की भक्ति है, ये आत्म साक्षात्कार है, ये आध्यात्मिक जीवन है। क्योंकि लोग इतने स्वार्थी बन गए हैं आजकल कि अगर कोई थोड़े बहुत भी निस्वार्थपन दिखाता है और दूसरों के शरीर के लिए भी काम करता है, ये तो बहुत बड़ा आदमी माना जाता है। इसलिए अक्सर जब भी हमारे संस्था के भक्त कहीं भी जाते हैं तो लोग उनको अक्सर ऐसे प्रश्न करते हैं कि आप गरीबों के लिए क्या कर रहे हैं, आप अंधों के लिए क्या कर रहे हैं। एक व्यक्ति हमसे बहुत बहस करने लगे थे, क्योंकि उस समय एक पत्रिका में एक लेख छपा था कि वृंदावन में जगह जगह से विधवाएं आती हैं, खास करके बंगाल से, मणिपुर से इत्यादि, और उनकी आर्थिक परिस्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं है। कभी वो बीमार हो जाते हैं, उनको उनका देखभाल करने के लिए कोई नहीं रहता है। तो लोगों को वैसे आध्यात्मिक जीवन में इतनी गंभीरता से रुचि नहीं है, लेकिन वो केवल ये दिखाना चाहते हैं कि जो लोग आध्यात्मिक जीवन में हैं, कैसे उनको आगे बढ़ने नहीं देना, क्योंकि ये भी भौतिक वृत्ति है। हम नहीं बढ़ेंगे लेकिन दूसरों को भी बढ़ने नहीं देंगे। तो बोल रहे थे कि आपकी संस्था वृंदावन के विधवाओं के लिए क्या कर रहे हैं, सारे देश में विधवाएं हैं उनके लिए क्या कर रहे हैं। तो हमने बताया कि केवल विधवाओं के लिए क्यों, हम तो सारे जगत के लिए कार्य कर रहे हैं हमारी संस्था के माध्यम से। ऐसा नहीं है कि केवल विधवाएं केवल दुखी हैं इस जगत में, सभी लोग दुखी हैं। केवल गरीब दुखी नहीं, अमीर लोग भी दुखी हैं, हर एक व्यक्ति दुखी है यहाँ पर। तो इस तरह से ये लोगों के मन में ये धारणा रहती है कि भौतिक दृष्टि से जिसके पास कुछ कमी है या जो कष्ट में है, उसका मदद करना ही ये कल्याण का काम है। लेकिन श्रीमद् भागवत में बताया है कि ऐसा नहीं है। कृष्ण भक्ति के मार्ग में जाना ये सबके सबसे बड़ा कल्याण का मार्ग है। जब सूत गोस्वामी नैमिषारण्य पहुंच जाते हैं तो वहां के ऋषि मुनि उनसे कई प्रश्न करते हैं, और फिर सूत गोस्वामी उनका अभिनंदन करते हुए कहते हैं कि आपने बहुत अच्छे प्रश्न किए, साधु साधु, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। जो आपने प्रश्न किए हैं ये सारे जगत के कल्याण के लिए हैं, क्योंकि ये श्री कृष्ण के बारे में है। श्री कृष्ण के बारे में प्रश्न करने से, श्री कृष्ण के बारे में सुनने से हमारा सचमुच कल्याण हो सकता है, क्योंकि हृदय के अनर्थ खत्म हो सकते हैं। वृंदावन की गोपियां भी इसी बात का वर्णन करती हैं गोपी गीत में, जो कि एक बहुत सुंदर और महत्वपूर्ण अध्याय है श्रीमद् भागवत में। जब गोपियां श्री कृष्ण के विरह में सोच रही होती हैं कि कैसे हम इस पीड़ा से मुक्त हो जाएं, तो वो अपने ही आपस में ही गोपियों के साथ में मिलकर बात कर रहे हैं और ये महत्वपूर्ण श्लोक कहते हैं। तव कथामृतम् तप्त जीवनम् कविभिरीतम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। गोपिया कहती हैं, तव कथामृतम्, हे कृष्ण, आपके कथा के अमृत का पान करने से सारे लोगों के हृदय में, उनके जीवन में जो त्रिविध ताप हैं, ताप मतलब कष्ट, अग्नि जो जल रही है सबके हृदय में, उसका शमन हो जाता है। तप्त जीवनम, तप्त मतलब जो इस त्रिविध तापों की वजह से विचलित हैं, ऐसे तप्त लोगों का जीवन है, प्राण है। इसका मतलब है कि कृष्ण कथा वो अमृत है जिसकी वर्षा होने से हर एक व्यक्ति के हृदय में जलने वाले तीव्र दुख के अग्नि का शमन हो सकता है। बाहर की अग्नि बुझाने के लिए हम अग्निशमन केंद्र से वाहन बुला सकते हैं, 101 है जो भी नंबर फोन करके, लेकिन अगर हमें हृदय के अंदर की अग्नि को शांत करना है तो हमें ये ऊपर वाला नंबर डायल करना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तुरंत हमारे हृदय का जो हृदय की अग्नि है वो नष्ट हो जाती है। लोग अक्सर टीका करते हैं, कह रहे आप लोग क्या है केवल ही हरे कृष्ण हरे राम करते हैं, कुछ प्रैक्टिकल बातें करो, आप कुछ प्रैक्टिकल चीजें करके दिखाओ। तो दिन भर के झाड़ के नीचे बैठ पेड़ के नीचे बैठकर हरे कृष्ण हरे राम बोलने से दुनिया थोड़ी चलेगी। लेकिन वो नहीं जानते हैं कि एक बार भगवान कृष्ण के नाम का उच्चारण करने में कितनी शक्ति है। एक संत ने कहा है कि कृष्ण प्रेम का एक मिलीलीटर या मिलीग्राम समझिए, मिलीग्राम जानते हैं ना, ग्राम का भी एक हजारवां हिस्सा। एक मिलीग्राम अगर कृष्ण प्रेम का किसी के पास हो तो वो कई हजार टन प्रयत्न से ज्यादा अच्छा है। टन मतलब एक टन मतलब हजार किलो, मतलब कई हजार टन के मूल्य में कोई प्रयत्न कर रहा है, समाज के समस्याओं का समाधान करेंगे हम, ये करेंगे वो करेंगे, बहुत कुछ समाज के कल्याण के लिए कार्य करते हैं, लेकिन उनके कार्यों में ज्यादा फल नहीं मिलता, परिणाम नहीं मिलता। मतलब जो वांछित फल है उनको चाहिए कि लोग सुखी रहें, वो उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती। लेकिन किसी के पास अगर एक मिलीग्राम भी कृष्ण प्रेम है, भगवत भक्ति है, तो उस व्यक्ति की वजह से बहुत ज्यादा फायदा कितने लोगों को हो सकता है। यह कृष्ण भक्ति का कमाल है। कृष्ण भक्ति एक जगह बैठ के करने से भी इसका लाभ मीलों मीलों दूर तक चल सकता है। कृष्ण भक्त को जगह जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ती, हालांकि वो जाते हैं प्रचार के लिए, लेकिन अगर कोई व्यक्ति एक जगह पेड़ के नीचे बैठ के भी अच्छी तरह से भगवान का नाम का जप कीर्तन करता है, जो फायदा उस जप से न केवल उस व्यक्ति के लिए परंतु लाखों लाखों लोगों के लिए जो होगा वो हमारे कल्पना के बाहर है। तो यहां पर जब सुबह को सब भक्त मिलकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं या संकीर्तन करते हैं या नगर में घूमकर नगर संकीर्तन करते हैं, तो इसमें जो फायदा होगा, जो कल्याण लोगों का होगा, वो लोग सोच नहीं सकते, सब उनकी कल्पना के बाहर है। लोग अक्सर टीका करते हैं, कई लोग सुबह उठकर सुबह सुबह जब नगर संकीर्तन में जाते हैं तो ऊपर से चिल्लाते हैं, अरे क्या हमारी नींद खराब करते हो, कोई गाली देते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि उनके हित के लिए क्या है। तो क्या हमें हिचकिचाना चाहिए? कई बार भक्तों को लगता है कि नहीं उनको कष्ट कैसे देंगे, लेकिन समझिए कि कोई व्यक्ति अपने घर में आराम से सो रहा है और उसके घर को आग लगी है, तो उस समय आप उसको जाके बड़े जोर से जगाएंगे, अरे उठो उठो, हम अगर सोचेंगे नहीं उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बेचारे को सोने दो, तो क्या हो जाएगा, वो तो जल जाएगा, उसका सारा घर भी जल जाएगा। उसी तरह से ये सारे लोग आजकल इस दावा नल में तड़प रहे हैं, जल रहे हैं। हर एक व्यक्ति पीड़ित है, हर एक के घर में, हर एक के जीवन में यही चल रहा है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ये परेशानी वो हैरानी, ये समस्या, कोई भी व्यक्ति शांत नहीं है। इसलिए कृष्ण भक्ति ही एकमात्र मार्ग है। तो जो व्यक्ति इस तरह से कृष्ण भक्ति के अमृत की वर्षा सब जगह कराता है वो भूरिदा, ऐसे जन भूरिदा मतलब सबसे उदार व्यक्ति हैं, सबसे परम कल्याण के कार्य में वो लगे हुए हैं। गोपिया कहती हैं, तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भी रीरितम। कवि मतलब न केवल जो कविता लिखता है, लेकिन जो दार्शनिक को भी कविता कवि कहते हैं। तो ऐसे बड़े बड़े जो ऋषि मुनि हैं और भगवान के भक्त हैं, ईर्तम, वो इस कृष्ण कथा का वितरण करते हैं सब जगह जाकर। कल्मश आप हम, ऐसे कृष्ण कथा करने से हमारे हृदय के सारे पाप और पाप करने की प्रवृत्ति भी नष्ट हो जाती है। इसी श्लोक में क्षीण कल्मशा कहते हैं श्री कृष्ण, लेकिन कृष्ण कथा सुनने बोलने मात्र से पाप दूर भाग जाते हैं। यहां तक कि शास्त्र में बताया है कि जो व्यक्ति केवल कीर्तन में भाग लेता है, उत्साह से वो कृष्ण का नाम लेता है और ताली मारता है कीर्तन में, तो उस तरह से उसके हृदय से पाप भाग जाते हैं जिस तरह से एक वृक्ष के शाखा के ऊपर बैठे हुए पक्षी उड़ जाती है जब हम पास में आके ताली मारते हैं। तो हमारे पाप भी उस पक्षी के समान है, कीर्तन में ताली मारेंगे उड़ के चले जाएंगे दूर बेलगाम के बाहर। क्षीण कलमशा, या गोपियां जैसे कहती हैं, कलमश आप हम मतलब दूर जाना, नष्ट हो जाना। श्रवण मंगलम, श्रवण मंगलम मतलब न केवल ये पाप को नष्ट करता है लेकिन सबका जीवन कल्याणमय बना देता है, शुभ बना देता है। हम जगह जगह देखते हैं शुभ लाभ। शुभ लाभ मतलब क्या है? दुड्डो पैसा। जब पैसा किसी के पास है तो लोग सोचते हैं बहुत शुभ शुभ है ये, लेकिन सच्चा जो शुभ चीज है वो है कृष्ण भक्ति। रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में बताते हैं कि भक्ति के 6 लक्षण हैं। सबसे पहला लक्षण है क्लेश अग्नि, कि क्लेश जो हमारे हृदय में क्लेश है वो नष्ट हो जाते हैं। और दूसरा है शुभदा, शुभता प्रदान करने वाली भक्ति, कल्याण को वितरण करने वाली भक्ति। श्रवण मंगलम, श्रीमद आततम, श्रीमत, ये श्रीमत श्री शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं। श्री मतलब सुंदर, श्री मतलब ऐश्वर्यवान, श्रीमत श्री मतलब शक्तिशाली। तो हरिनाम का कीर्तन और कृष्ण कथा ये सब है, सुंदर भी है, सारे ऐश्वर्यों को प्रदान कर सकता है और साथ साथ बहुत पावरफुल है, शक्तिशाली है। जो व्यक्ति इस हरिनाम का कृष्ण कथा का आश्रय लेता है उसका सारा जीवन बदल सकता है। आप में से यहां हम सब जो भी बैठे हैं, हम इस बात के की पुष्टि है, का प्रमाण है कि जब से हम कृष्ण भक्ति में आए हमारे सारे बुरे काम पीछे जो हम करते थे वो सब छोड़ के आए। इसलिए श्रीमद आततम बहुत शक्तिशाली है, जगह जगह इसकी शक्ति फैल सकती है। इसलिए भूरिदाजना, ये गोपियां कहते हैं सबसे कल्याण का मार्ग है कृष्ण कथा का वितरण करना। इसलिए जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति करते रहता है वो जीवन मुक्त कहलाता है। इस जीवन में रहते हुए जो भगवान श्री कृष्ण के अपने काया से मन से वाचा से सेवा करता है, जीवन मुक्त स उच्चते, उसको जीवन मुक्त कहते हैं। इसलिए सारे गुण जो यहाँ लिखे हैं श्री कृष्ण ने, वो सब उनके अंदर आ जाते हैं। तो कृष्ण भक्त के लिए भगवान ने मार्ग बहुत आसान बना दिया है। हमको ऐसी कोई तपस्या नहीं करनी चाहिए, हमको केवल भक्तों के संग में आकर दासानुदास बनकर कृष्ण कथा कृष्ण नाम का श्रवण कीर्तन करना चाहिए, बस। कई बार लोग बोलते हैं अरे आप कुछ सेवा करो, केवल जप करते हो कीर्तन करते हो। भक्ति मार्ग में भी लोग कई बार ऐसे बोलते हैं, लेकिन यही तो सबसे महत्वपूर्ण सेवा है। अगर ये सेवा हमारी नहीं हुई तो हमारी दूसरी सेवा में भी कोई कमी आ जाएगी, वो सही भावना से दूसरी सेवा हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए भगवान के नाम का जप करना, कीर्तन करना, कथा सुनना इत्यादि, ये हमारे लिए अनिवार्य है। इसके लिए कोई कंसेशन नहीं दिया जा सकता, कोई छूट नहीं दी जा सकती, ये तो सबको करना ही है। भले कोई आके अर्चा विग्रह की सेवा के लिए आए या नहीं आए, कोई भले मंदिर के लिए और कोई सेवा करे या नहीं कर पाए, लेकिन श्रवण कीर्तन कम से कम उतना तो होना ही चाहिए। और इतना अगर हो गया, श्रवण मंगलम श्रीमदाततम कल्मषापहम, सारे चीजें जो यहां लिखी हैं खुद ब खुद हो जाएंगे। आगे इसी बात को श्री कृष्ण 26वें श्लोक में भी वर्णन कर रहे हैं। तो आइए 26वें श्लोक का पाठ करते हैं। काम क्रोध विमुक्तानां यतीनां यतचेतसां अभितो ब्रह्म निर्वाणम् वर्तते विदितात्मनाम। पादशील प्रभुपाद द्वारा जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हैं, जो स्वरूप सिद्ध आत्मसंयमी हैं और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। कृपया दोहराइएगा, जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हैं, जो स्वरूप सिद्ध आत्मसंयमी हैं और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। तो अगर हम अगर पिछले श्लोकों को पढ़कर थोड़ा निराश भी हो गए हों, तो यहां पर श्री कृष्ण थोड़ा आश्वासन दे रहे हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आप पूरी तरह से सिद्धि की प्राप्ति नहीं कर चुके हैं, कम से कम आप प्रयत्न तो कर रहे हैं, यत चेतसाम, इतना करने से बहुत है, आप बहुत ही जल्दी मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। भगवान कृष्ण हमारे प्रयत्न को देखते हैं, केवल फल को नहीं। हर एक व्यक्ति अपने अपने पूर्व जन्म के बोझ को यहां लेकर आता है इस जन्म में, इसलिए कोई व्यक्ति आसानी से हरिनाम का जप कर सकता है और कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। हो सकता है दो भक्त उतने ही सिंसियर हों भक्ति में, परंतु एक को जप करने में ज्यादा कठिनाई हो रही है। हो सकता है कि दोनों में अंतर यह है कि पिछले जन्म में जो पहले भक्त ने ज्यादा भक्ति की होगी, उसको इस जन्म में जप करना आसान लग रहा है, बल्कि दूसरे को बहुत कठिन लग रहा है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण केवल ये नहीं देखते हैं कि हमारे भक्ति का फल क्या आता है, भगवान हमारे हृदय से प्रयास को देखते हैं। यहां पर श्री कृष्ण कह रहे हैं, काम क्रोध विमुक्ता नाम, जो लोग काम और क्रोध से मुक्त हो जाते हैं वो यति, यति मतलब जो सन्यासी लोग हैं, यत चेतसाम, जिन्होंने अपने मन के ऊपर वश कर लिया है, अभितः मतलब अभी अभी थोड़े देर में उनको क्या मिलेगा, ब्रह्म निर्वाणम, बहुत जल्दी उनको मिल जाएगा, वर्तते विदितात्मनम, और जो आत्म साक्षात के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। ये खास करके मार्ग जो अष्टांग योगी इत्यादि के लिए बताया गया है, भक्तों के लिए ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। प्रभुपाद जी यहां तात्पर्य में बताते हैं कि भक्त के लिए पद्धति बहुत आसान है, केवल श्री कृष्ण का नाम कीर्तन करने से वो सारे फल मिल जाते हैं जो योगियों को बहुत लंबे साल कड़े परिश्रम करने के बाद ही मिलता है, बल्कि भक्त और भी ऊंची गति को प्राप्त करता है, जो कि योगी ज्ञानी कर्मी नहीं कर सकते। योगियों को अपने इंद्रियों को वश में करना ये बहुत कठिन काम हो जाता है, लेकिन भक्तों के लिए उतना कठिन नहीं है। आप बोलेंगे, जी नहीं, हम तो यहां रहते हैं, हमको पता है कि इंद्रियों को वश में करना कितना कठिन है, तो सोचिए योगियों को कितना और कठिन होगा, संभव नहीं है। जब एक तालाब है और तालाब के ऊपर कोई हवा नहीं बह रही है, तो अंदर जो मिट्टी है वो नीचे जमीन में बस जाती है और फिर वो पानी ऐसे लगता है कि स्वच्छ हो गया है, निर्मल हो गया है, आप नीचे जमीन देख सकते हैं उस पानी के माध्यम से। लेकिन एक लकड़ी लीजिए और छड़ी लेकर पानी को हिलाइए, क्या हो जाएगा? फिर से मिट्टी ऊपर आ जाएगी, गंदगी पानी में फैल जाएगी। ठीक उसी तरह से अन्य योग पद्धतियां जो हैं, उनमें जो कलमश होते हैं, जो पाप करने की प्रवृत्ति होती है, वो पूरी तरह से नष्ट नहीं हो जाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि शायद ये सारे पाप नष्ट हो गए हों, लेकिन हृदय के नीचे बस जाते हैं, बैठ जाते हैं नीचे। और जब सही समय आ जाता है, कोई विषय का प्रलोभन सामने आ जाता है, इंद्रिय विषय का, अंदर हृदय में हिला देते हैं वो इंद्रिय विषय, और फिर सारे वो इंद्रिय भोग की जो इच्छाएं हैं फिर से ऊपर आती हैं, बाहर चले आती हैं। तो ये है ज्ञान योग, अष्टांग योग, कर्म योग इत्यादि। लेकिन भक्ति का मतलब है कि पूरी तरह से मिट्टी को निकाल ही देना, अर्थात पाप करने की प्रवृत्ति को भी पूरी तरह से नष्ट कर देना। केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणाः अघम धुन्वन्ति कार्त्स्नेन निहारम इव भास्कर। सुखदेव गोस्वामी श्रीमद भागवत के छठे स्कंद में परीक्षित महाराज को बताते हैं कि केवल ये भक्ति मार्ग जो है, केवला भक्ति मतलब शुद्ध भक्ति का मार्ग, वही हमारे हृदय के पाप करने की प्रवृत्ति को नष्ट कर सकता है। अन्य जो योग हैं, पद्धतियां हैं, वो केवल पापों को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति को नष्ट नहीं कर सकते। लेकिन भक्ति न केवल पाप को, लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति को भी नष्ट कर सकता है। ये भक्ति की खूबी है। इसलिए जो भी अन्य योग पद्धतियां हैं, वो भक्ति योग के ऊपर निर्भर हैं। अगर कोई अष्टांग योगी अष्टांग योग में सफलता चाहता है, उसको भी भक्ति योग का सहारा लेना पड़ेगा। अगर कोई ज्ञान योगी भी ज्ञान योग के पथ में प्रगति करना चाहता है, उसको भी भक्ति योग का सहारा लेना पड़ेगा। इसलिए हम देखते हैं कि ये जो ज्ञानी योग कितने संस्थाएं हैं जो ज्ञान योग और अष्टांग योग का मार्ग सिखलाते हैं, वो लोग भी भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, वो भी मूर्ति की पूजा करते हैं, वो भी ऐसे कई चीजें करते हैं जो भक्त लोग करते हैं, लेकिन उनकी भावना, उनकी चेतना अलग होती है, सेवा की भावना नहीं होती है। लेकिन उनको ये जरूरत पड़ती है कि इन चीजों का वो सहारा लें, क्योंकि उनका अपना पथ इतना मजबूत नहीं है कि वो उनको पाप करने की प्रवृत्ति से मुक्त करा दे। इसलिए उनको भक्ति मार्ग का आश्रय लेना पड़ता है। लेकिन भक्ति मार्ग के साथ ऐसा नहीं है। भक्ति मार्ग स्वतंत्र है। भक्ति मार्ग किसी दूसरे मार्ग के ऊपर निर्भर नहीं है। केवल भक्ति करने मात्र से हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, भक्त लोग कभी कभी योगाभ्यास करते हैं, लेकिन केवल शरीर के लिए, आध्यात्मिक प्रगति के लिए नहीं। कई बार लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि क्या हम लोग प्राणायाम और आसन वगैरह कर सकते हैं? क्यों नहीं? अगर केवल आपके शरीर को ठीक रखने के लिए आप कर रहे हैं तो ठीक है, कोई बुरी बात नहीं है इसमें। लेकिन आगे प्रश्न आएगा कि शरीर को हम क्यों ठीक रखना चाहते हैं? ज्यादा से ज्यादा लोग जो सुबह को पैदल चलते हैं, मॉर्निंग वॉक में जाते हैं, और उद्यानों में जाके कसरत करते हैं, और व्यायामशालों में जाके फिर वो वजन वगैरह उठाते हैं, क्यों करते हैं? अपने शरीर को ठीक वो क्यों रखना चाहते हैं? क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा इंद्र तृप्ति करना चाहते हैं। शरीर एक इंद्रियों को तृप्त करने के लिए एक वाहन है, और अगर हम बीमार पड़ जाएं तो इंद्र तृप्ति नहीं कर पाएंगे, तो फिर जीवन का क्या मतलब? इस तरह से लोग जो भी अपने शरीर का देखभाल करते हैं, वो इंद्र तृप्ति के लिए करते हैं। लेकिन अगर हमने इन चीजों का उपयोग किया हमारे शरीर के लिए, ताकि हमारा शरीर लंबे समय तक अच्छी तरह से श्री कृष्ण की सेवा में युक्त रह सके, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। परंतु जो भक्ति योग की पद्धति है, वो तो स्वतंत्र है, किसी दूसरे पथ के ऊपर निर्भर नहीं है। प्रबोधानंद सरस्वती एक महान वैष्णव आचार्य रहे। उन्होंने अपने एक कविता में लिखा है, कैवल्यम नरकायते त्रिदशपुर आकाश पुष्पायते। वो कहते हैं कि
कैवल्य मतलब निराकार ब्रह्म लीन होना, ये मेरे लिए नरक के बराबर है। मतलब मेरे को ज्ञान योग का पथ भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसकी अंतिम गति क्या है कि हमारे अस्तित्व को हम नष्ट करना चाहते हैं। त्रिदशपुर आकाश पुष्पायते, ये जो स्वर्ग लोक इत्यादि है जिसकी प्राप्ति कर्मकांडी लोग करना चाहते हैं, ज्योतिषोम अग्निष्टोम ये सब अलग अलग अग्निहोत्र इत्यादि करके वो इन ऊपर के लोकों को प्राप्त करना चाहते हैं, ताकि अगले जन्म में देव लोक को प्राप्त करके सोमरस का पान करें और वहां नंदन कानन वन में अप्सराओं के साथ रमण करें। तो प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं मुझे ये भी नहीं चाहिए। दुर्दांत इंद्रिय काल सर्प पटली प्रोत्खायते दंष्टायते, वो कहते हैं ये इंद्रियां जो हैं दुर्दांत इंद्रिय बड़े बलवान हैं, जबरदस्त हैं ये इंद्रियां, दुर्दांत बहुत शक्तिशाली, इनको वश में करना प्राय असंभव है। दुर्दांत इंद्रिय काल सर्प पटली, काल सर्प मतलब एक बहुत जहरीला सांप, जैसे पटली मतलब बहुत सारे, तो ऐसे समझिए कि बहुत सारे सांप कोबरा सांप जिनके अंदर बहुत जहर है ये सब हमारे पास में हैं, तो हमको तो डसेंगे ही वो। तो इंद्रियां ऐसी हैं क्योंकि इंद्रियां इंद्रियों के विषय में रमण करना चाहती हैं, लेकिन ये विष के पान के बराबर है। अज्ञान के वश आदमी समझता नहीं है कि मैं जिस चीज को अमृत समझ रहा हूं वो वास्तव में विष है, मैं यह संसार का भोग करके मैं विष का पान कर रहा हूं, ऐसे जहरीले सांप का जिससे कि मृत्यु निश्चित है। इसलिए जो व्यक्ति भोग करता है उसको बारंबार यहां जन्म मृत्यु के चक्कर में अटकना पड़ता है, बारंबार मृत्यु का सामना करना पड़ता है। लेकिन प्रबोधानंद सरस्वती एक सुंदर बात बताते हैं, ठीक है इंद्रियां भले ही बहुत सारे कोबरा सांप की तरह हों, लेकिन क्योंकि मैं अभी भक्ति कर रहा हूं प्रोत्खात दंष्टायते, मेरी इंद्रियां ऐसे सांप के समान हैं जिनके जो दांत हैं वो निकाल दिए हैं, दांत निकाल दिए मतलब अब आपको डस नहीं सकता, वो दूर से करेगा बस उतना ही कर सकता है, बाकी कुछ नहीं कर पाएगा, आपको कोई नुकसान पहुंचा नहीं पाएगा आपको। क्यों? क्योंकि इंद्रियां जो हैं वो कृष्ण की सेवा में लग गई हैं, और ऐसे सेवा में लग के अब भक्त को और कुछ नहीं चाहिए, भक्त डरता नहीं है इंद्रियों का क्या होगा क्या होगा, वो कृष्ण भक्ति करने में इतना मग्न होता है कि उसको इन चीजों के लिए बिल्कुल समय ही नहीं है। प्रहलाद महाराज भी श्रीमद् भागवत के सातवें स्कंद में कहते हैं, नैवो द्विजे पर दुरत्यय वैतरण्यास् त्वद्वीर्य गायन महामृतमग्न चित्ताः शोचे ततो विमुख चेतस इंद्रियार्थ। वो कहते हैं जब से मैंने आपके कथामृत का पान किया है तब से मुझे कोई चिंता नहीं है। न उद्विजे, उद्विजे मतलब विचलित होना, न उद्विजे नहीं वो द्विजे पर दुरत्यय वैतरण्यास, वैतरणी ये भौतिक जगत को कभी कभी वैतरणी कहते हैं, बहुत भयानक है पर दुरत्यय, इसको पार करना बहुत कठिन है और इसमें रह के भी इतने पीड़ा सहन करनी पड़ती है, बहुत बुरी हालत है यहाँ सबकी इस भौतिक जगत में। लेकिन प्रहलाद कहते हैं न उद्विजय, मैं विचलित नहीं हूं, और वास्तव में प्रहलाद केवल ऐसे यूं ही नहीं बोल रहे हैं, जैसे कई लोग हैं जो बोलते हैं हम कृष्ण को जानते हैं हम भी कृष्ण से प्रेम करते हैं, बोलने में क्या है, बोलने के लिए तो बहुत कोई लोग बोलते हैं, प्रहलाद ऐसे नहीं बोल रहे हैं, उन्होंने करके दिखाया है, जो वो बोल रहे हैं उन्होंने वास्तव में करके दिखाया। उनके पिताजी हिरण्यकश्यप ने क्या नहीं किया प्रहलाद के साथ, उनको आग में डाल दिया, उनको पागल हाथी के पैरों के नीचे कुचला देने का प्रयास किया, उनको ऊपर पहाड़ से पहाड़ के चोटी से नीचे फेंकने का प्रयास किया, फेंका भी, जादू टोना किया नाना प्रकार से, एक ऐसे खड्डे में डाल दिया जहां बहुत सारे ये कोबरा सांप थे, काल सर्प पटली, वो भी कुछ नहीं कर पाए। बहुत सारे अस्त्र शस्त्रों से आक्रमण किया, लेकिन प्रहलाद के एक बाल को भी कुछ नहीं हुआ। और प्रहलाद विचलित भी नहीं हुए, केवल हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण के स्मरण में थे। उसी तरह से अम्बरीश महाराज, जब दुर्वासा मुनि ने अपने बाल से एक राक्षस को उत्पन्न किया और राक्षस को आदेश दिया कि जाके अम्बरीश महाराज की हत्या करो, अम्बरीश महाराज इधर उधर भागे नहीं अपने आप को बचाने के लिए, बचाओ बचाओ कहके भागे नहीं। सैनिक सिपाही सेनापति कहां गए, आओ बचाओ, नहीं। उन्होंने केवल हाथ जोड़ लिया, हाथ जोड़ के केवल भगवान के स्मरण में चुपचाप रहे। अम्बरीश महाराज चुपचाप रहे, लेकिन श्री कृष्ण नहीं चुपचाप रह सके, बल्कि उनकी उंगली से खुद ब खुद सुदर्शन चक्र निकल गई और सीधे दुर्वासा मुनि के पास आई। पहले उस राक्षस को खत्म कर दिया और राक्षस को पैदा करने वाले दुर्वासा मुनि के पीछे लग गई, लेकिन अम्बरीश महाराज विचलित नहीं हुए। उसी तरह से प्रहलाद महाराज भी, हालांकि एक 5 साल के बच्चे थे, फिर भी बिल्कुल विचलित नहीं हुए, केवल हाथ जोड़ के वो अपने प्रभु अपने स्वामी का स्मरण करते थे। इसलिए श्रीमद् भागवत में युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि से कहते हैं कि हम सुनना चाहते हैं कि एक पिता जो कि स्वाभाविक तौर से अपने बच्चे से प्रेम करता है, उसने अपने बच्चे को इतना कष्ट क्यों दिया। और हमने सुना है कि प्रहलाद इतने बड़े भक्त थे कि देवलोक में भी जहां अगर कोई सत्संग होता था या जहां लोग सभा में एकत्र होते थे और भक्ति की चर्चा करते थे, तो सबसे पहले प्रहलाद का नाम आता था। और प्रहलाद की भक्ति, प्रहलाद की प्रसिद्धि, वो प्रहलाद के 5 वर्ष की उम्र में भक्ति करने के ऊपर ज्यादा निर्भर है। बिल्कुल विचलित नहीं थे प्रहलाद। तो प्रहलाद जो बोल रहे हैं वो वास्तव में अपने साक्षात्कार से बोल रहे हैं, केवल बोलने के लिए नहीं बोल रहे हैं। तो वो कहते हैं, नैवोद्विजे परत दुरत्य वैपरण्यास त्वत् वीर गायन महामृत मग्न चित्ताः। त्वत् मतलब आपका, वीर्य मतलब आपके सुंदर विक्रमों के, आपके कार्यों के, लीलाओं का वर्णन सुन के मग्न चित्ताः। महामृत, ये जो महाअमृत है आपके कथाओं का, इसको सुन के मेरा चित्त उसमें मग्न हो गया है। त्वत् वीर गायन महामृत मग्न चित्ताः। और क्योंकि मेरा मन इतना मग्न हो गया है आपके स्मरण में, मुझे ये संसार का त्रिविध ताप जो है, ये कष्ट जो है, बिल्कुल परेशान नहीं करता है। जैसे गोपियां भी यशोदा माता के बारे में बोलती हैं कि अगर यशोदा देवी श्री कृष्ण को, श्री कृष्ण के सुंदर मुखारविंद को अपने सामने देखती, तो अगर भी उनके वो किसी आग के ऊपर खड़ी होती तो उनको वो आग बर्फ के समान ठंडा लगता। इसका मतलब है कि कृष्ण के सुंदर मुखारविंद को देखकर उनको इतना आनंद मिलता था, दिव्य आनंद मिलता था, कि सारे संसार का कष्ट बिल्कुल तुच्छ हो जाता था उस दिव्य आनंद के तुलना में। प्रहलाद भी इसी बात को यहाँ पर दोहरा रहे हैं। हालांकि प्रहलाद दिव्य आनंद की अनुभूति कर रहे हैं, लेकिन उनके मन में एक दुख अवश्य है। शोचे ततो, फिर भी मैं शोक कर रहा हूं। क्या शोक कर रहे हैं प्रहलाद? अभी अभी कहा उन्होंने कि न उद्विजय, कि मैं उद्विग्न नहीं होता हूं बिल्कुल, लेकिन यहां कहते हैं मैं शोक करता हूं। किसके लिए? शोचे ततो विमुख चेतस इंद्रियार्थ माया सुखाय भरम उत्वहतो विमूढ़ान। वो कहते हैं ये संसार के माया सुख के पीछे जो लोग भाग रहे हैं, इंद्रियार्थ, ये इंद्रियों को माया सुख देने के लिए जो आपसे विमुख हो गए हैं, मैं ऐसे लोगों के लिए शोक कर रहा हूं। और ये चपल सुख, माया सुख के पीछे भागकर वो झूठे जिम्मेदारियां, झूठे बोझ अपने कंधों पे, सर पे ले लेते हैं। माया सुखाय भरम, भरम मतलब बोझ, भरम उद्वहतो उठाते हैं, मुझे ये काम करना है, वो काम करना है। क्यों? चपल सुख, माया सुख। और इसलिए प्रहलाद कहते हैं विमूढ़ान, केवल मूर्ख नहीं, केवल मूर्ख नहीं, अति मूर्ख है ये लोग। क्योंकि आपके कथा का पान, अमृत का पान नहीं करना चाहते, विष का पान करना चाहते हैं और ज्यादा से ज्यादा बोझ इस जीवन में ले लेते हैं। हालांकि प्रहलाद इनको मूर्ख कहते हैं, लेकिन मैं यहां रहकर इनका उद्धार करना चाहता हूं, क्योंकि इनकी जो दशा है मैं देख नहीं सकता इसको। भक्त जो होता है वो हमेशा पर दुख दुखी होता है, इसलिए जब देखता है कि दूसरे लोग दुखी हैं, वो जानता है कि कृष्ण भक्ति के अभाव से दुखी हैं, इसलिए उनको कृष्ण भक्ति देना चाहता है। वो अमृत का पान करता है, सोचता है कि मैं अकेला क्यों पान करूं, इस अमृत को सब जगह बांटना चाहिए मैंने। इसलिए प्रहलाद महाराज एक महान वैष्णव के लक्षणों को प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि कृष्ण भक्त सदा कृष्ण भक्ति में, कृष्ण की सेवा में, चिंतन मनन में मग्न रहता है। उसको संसार की कोई परवाह नहीं रहती है, संसार में क्या चल रहा है, क्या उत्पात हो रहा है। हाँ, एक दृष्टि से जैसे प्रहलाद महाराज सोच रहे हैं, सोचे तो विमुख, विमुख लोगों के लिए वो चिंता करते हैं, परंतु अपने लिए कोई उनको परवाह नहीं है। प्रभुपाद भी सुंदर तरह से यहाँ एक उदाहरण, एक दृष्टांत दे रहे हैं। श्वेताश्वतार उपनिषद में एक श्लोक है जिसमें बताया जाता है कि तीन प्रकार के जो प्राणी हैं वो अपने अंडों का देखभाल कैसे करते हैं। मछली क्या करती है? मछली भी अंडे देती है ना, लेकिन मछली अंडे का देखभाल कैसे करती है? केवल अपनी नजर से, दूर से देखती है और देख के देख के देख के वो उस अंडे का देखभाल करती है, फिर अंडा फूट कर उसको छोटा बच्चा निकल आता है। दूसरी बात, ये कछुआ टॉर्टोइस, वो क्या करता है, वो क्या करती है, जो माँ है वो अंडे जमीन पर रख देती है समुद्र के तट पे, और वो चले जाती है समुद्र में, पानी में, और पानी में बैठकर अंडे की ओर देखते ध्यान करती है, आंख बंद करके ध्यान करती है अंडे के ऊपर। इस तरह से अंडा हो जाता है बड़ा और फिर वो बच्चा निकल आता है। पक्षी स्पर्श से, अपने सर में देखा है, पक्षी अपने दिए हुए अंडे के ऊपर बैठ जाती है और फिर जब गर्मी हो जाती है पर्याप्त मात्रा से अंडा फूट जाता है और बच्चा बाहर निकल आता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ठीक उसी तरह से मैं भी कार्य करता हूं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जिस तरह से एक मछली अपने छोटे बच्चों को केवल अपनी दृष्टि से बड़ा पालन पोषण करके बड़ा करती है, जिस तरह से कछुआ केवल अपने ध्यान से अपने बच्चों को बड़ा करती है, और जिस तरह से एक पक्षी अंडों के ऊपर बैठ के बाद में अपने स्पर्श से अपने बच्चों को बड़ा करती है, ठीक उसी तरह से भक्त, हालांकि भगवान श्री कृष्ण के धाम से बहुत दूर है, फिर भी केवल श्री कृष्ण का स्मरण करके वो उस धाम में पहुंच सकता है अपने ध्यान मात्र से। ये तो चिंतन मनन है, ये ध्यान है, ये बहुत शक्तिशाली है। किस चीज के ऊपर हम ध्यान करते हैं ये महत्व की बात है। अगर कोई व्यक्ति भौतिक चीज के बारे में भी सोच रहा हो लेकिन बड़ी तीव्रता से, वो कमाल की चीजें कर सकता है। हम देखते हैं कि जितने भी बड़े वैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने सफलता अपने क्षेत्र में प्राप्त इसलिए किए कि वो इतने तीव्रता से उस समस्या के ऊपर ध्यान करते थे। ग्रीस देश में एक वैज्ञानिक थे हजारों साल पहले जिनका नाम था आर्किमिडीज, और आर्किमिडीज ने एक सिद्धांत निकाला है विज्ञान में, जो पानी के ऊपर तैरने वाले जो वजन होते हैं उनके बारे में। तो इसके बारे में आर्किमिडीज बहुत सोच रहे थे, सोचते सोचते उत्तर नहीं मिल रहा था, कई महीने बीत गए, लेकिन तीव्र ध्यान था इस समस्या के ऊपर। और जब वो स्नान कर रहे थे एक दिन, वो पानी की बाल्टी में बैठे हुए थे और फिर उन्होंने देखा, अरे ये उतार चढ़ाव क्या है पानी के अंदर, उनको अंदर से परमात्मा ने साक्षात्कार दे दिया। वास्तव में ये आविष्कार तो परमात्मा का था, हृदय में, हृदय के अंदर से भगवान ने उनको ये प्रेरणा दी, वो ज्ञान दे दिया। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, मैं स्मृति देता हूँ, विस्मृति देता हूँ, ज्ञान देता हूँ, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हृदय के अंदर से। तो अवश्य श्रेय परमात्मा को जाता है। परंतु परमात्मा ने आर्किमिडीज के हृदय में ये उत्तर क्यों दिया? ध्यान, क्योंकि आर्किमिडीज इतनी तीव्रता से ध्यान कर रहे थे। उसी प्रकार से जितने भी बड़े बड़े आविष्कार हुए हैं, और एक बड़े वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कुकेले, और वो कोई केमिस्ट्री की बात एक सोच रहे थे कि कैसे होना चाहिए, ये जो अणु है ये अणु मिलेंगे कि इनका क्या आकार होना चाहिए। सोचते 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 कई महीने बीत गए, अचानक उनको एक सपना आया एक दिन रात को, वो भी परमात्मा के द्वारा। और सपने में उन्होंने देखा कि एक सांप अपनी ही पूंछ को खा रहा है, तो गोल। तो वो जब देखा उन्होंने, उनको तुरंत क्लिक हो गया। और फिर कल जब उठे तो तुरंत उन्होंने एक बड़ा आविष्कार किया। उसी तरह से आजकल जो विज्ञान की किताबों में विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है अणु के बारे में, ये अणु के बीच में है, फिर और थोड़े वो है, वो घूमते रहते हैं, तो ये भी जिस व्यक्ति ने ये प्रस्ताव रखा, आविष्कार किया, उनका नाम है नील्स बोर, वो भी बहुत समय से चिंतन मनन करते 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 कि क्या हो सकता है क्या हो सकता है, उसी विषय के ऊपर ध्यान करते थे। और अचानक उनको अंदर से फ्लैश आ गया, एकदम परमात्मा ने अंदर से उनको ज्ञान दे दिया। इसका मतलब है कि ध्यान किसी भौतिक चीज के ऊपर भी हो, लेकिन अगर तीव्रता से हो तो उसमें बहुत कुछ कमाल की बातें हो सकती है। तो अगर भौतिक विषय के ऊपर ध्यान करने से इतने कुछ चमत्कारी की चीज हो सकते हैं, तो अगर हमने भगवान के ऊपर तीव्रता से ध्यान किया तो फिर कितने बड़े कमाल हो सकते हैं। इसलिए यहां प्रभुपाद समझा रहे हैं कि हालांकि भगवान का धाम बहुत दूर है, लेकिन अपने ध्यान से हम वहां पहुंच सकते हैं। केवल बस आंख बंद कर लिए, श्री कृष्ण का स्मरण किया, हम वहां चले गए। हम यहां नहीं, उस समय बेलगाम में नहीं। जिन क्षणों में हम भगवान कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं, उस समय हम बेलगाम में नहीं, हम वृंदावन में हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति वृंदावन में रहकर बेलगाम के बारे में सोच रहा है कि बेलगाम के सिनेमा थिएटर में कौन सा सिनेमा चल रहा है, तो वो वृंदावन में नहीं है, वो बेलगाम में है। वृंदावन में शरीर होते हुए भी वो बेलगाम में है। लेकिन बेलगाम में होते हुए अगर हम ध्यान से चिंतन मनन करेंगे श्री कृष्ण का, उनका नाम उच्चारण करेंगे, तो हम भी ध्यान के बल पर श्री कृष्ण तक पहुंच सकते हैं। इसलिए भक्त के लिए ये भक्ति का मार्ग, अध्यात्म जीवन का मार्ग, भगवत प्राप्ति का मार्ग बहुत आसान बना दिया है। हमें केवल भक्तों के संग में आकर इसी तरह से भजन कीर्तन कथा करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। अभी दर्शन होंगे, दर्शन के बाद प्रसाद। और याद रखिए कल वामन द्वादशी है, श्री वामन देव का आविर्भाव दिवस है, तो वामन देव जी को हैप्पी बर्थडे कहने के लिए अवश्य आइएगा।
एक परंपरा में, जो शंकर परंपरा में एक प्रवचन में ये बोला जा रहा था कि जैसे हम बाहर पानी से शुद्धिकरण करते हैं अपना शरीर का, हमको करना चाहिए, वैसे ही भगवान नाम से हृदय की शुद्धिकरण हो जाएगी। ये तो बात तो हम भी उसको मानते हैं। तो आगे ये कहा जाता है कि अंदर शुद्धि करने के लिए ठीक है, सवेरे एक बार हम भगवान का कभी भी स्मरण करेंगे तो खत्म हो गया। ऐसा नहीं कि दिन भर भगवान का नाम ही लेते बैठेंगे, कारण कि अगर बाहर शुद्धि करने के लिए हम एक बार सवेरे स्नान कर लेते हैं, वैसे तो हम जाके पानी में तो बैठते नहीं जैसे कि हम मछली नहीं है। तो ऐसा उनका कहना था कि अगर नाम ही ले हैं तो एकाध बार ले तो हो गया, क्यों जैसे मछली की तरह पानी में बैठ जाएंगे बाहर की शुद्धि करने के लिए और अंदर की शुद्धि करने के लिए।
हमारे जीवन की सफलता है अगर हम ऐसे मछली बन जाएं। रूप गोस्वामी ने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है भक्ति रसामृत सिंधु। सिंधु मतलब सागर, भक्ति के रस के अमृत का सागर। और रूप गोस्वामी कहते हैं कि जो मायावादी लोग हैं, जो भगवान के निराकार में लीन होना चाहते हैं, वो उन नदियों की तरह हैं जो आके सागर में मिल जाती हैं, अर्थात अपना अस्तित्व खो बैठती हैं। परंतु भक्त ऐसे नहीं होते, वो भी सागर में हैं, भक्ति के सागर में, परंतु अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। वो मछली की तरह है जो सागर में गहराई 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 में जाते 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 इस रस के अमृत का पान कर रहे हैं। ऐसे सब कहने से हमें और भी तीव्रता से पता चलता है कि इन्होंने कृष्ण को समझा नहीं है और कृष्ण के नाम को समझा नहीं है। वो लोग कृष्ण भक्ति को केवल एक साधन समझते हैं। जैसे हम कह रहे थे कि जब तक कि वो कृष्ण भक्ति का सहारा नहीं लेंगे, अपने ही योग पद्धति में वो सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो वो लोग इसको साधन समझते हैं, लेकिन कृष्ण भक्ति में हम कृष्ण के नाम के उच्चारण को न केवल साधन बल्कि साध्य भी समझते हैं, लक्ष्य। हर चीज के लिए यहाँ पर हर प्रयास के लिए दो चीजें होते हैं, जो प्रयास होता है और प्रयास करने से जो हमको फल मिलता है, जो परिणाम होता है। हर एक व्यक्ति प्रयास करता है किसी भी एक फल के लिए। व्यक्ति नौकरी करता है ताकि महीने के अंत में उसे तनख्वाह मिल जाए। तनख्वाह नहीं मिले तो कोई काम नहीं करेगा। तो ये लोग भगवान में लीन होना चाहते हैं और उसके लिए उन्होंने यहां से साधन लिया है, वहां से साधन लिया, यहां से साधन लिया, लेकिन वो ये नहीं जानते कि कृष्ण तत्व क्या चीज है, कि कृष्ण का नाम न केवल साधन है लेकिन साध्य भी है। श्रील प्रभुपाद को किसी ने एक बार पूछा था कि आप हरे कृष्ण का जप क्यों करते हैं, तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया था, ताकि हम और जप कर सकें। मतलब हरे कृष्ण जप करने का उद्देश्य है और जप करना, और जप करने का उद्देश्य है और भी जप करना। मतलब भगवान के निरंतर नाम स्मरण में रहना, ये हमारा उद्देश्य ही है, भगवान का गुणगान सतत करते रहना। क्योंकि ऐसा ही भगवद गीता में भगवान कहते हैं, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता, सततम कीर्तयन्तो माम। तो कहते ही हैं भगवान कि सतत कीर्तन किया करो, 24 घंटे मेरे नाम का कीर्तन और जप किया करो। तो इसलिए हम लोग करते हैं। तो जब भगवत तत्व का पूर्ण ज्ञान नहीं होता है, इसलिए लोग अपूर्ण ज्ञान की वजह से ऐसी धारणाएं लोगों के सामने रखते हैं जिससे कि कन्फ्यूजन, भ्रांतियां हो जाती है लोगों के मन में। लेकिन सत्य तो यह है कि कृष्ण के नाम में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। इसलिए हम ऐसे मछली बनना चाहते हैं जो 24 घंटे भगवान का नाम लें। प्रश्न यहां यह है कि एक भक्त की भक्ति में प्रगति क्या अपने पूर्व जन्म के कर्म के ऊपर निर्भर है, या अपने पूर्व जन्म के भक्ति के ऊपर निर्भर है, या ये केवल एक इस बात को समझने और स्वीकार करने की बात है। वैसे भक्ति किसी भौतिक चीज के ऊपर निर्भर नहीं है। हमारे पूर्व जन्मों के कर्म, चाहे वो पाप हो या पुण्य, ये भौतिक है, लेकिन भक्ति आध्यात्मिक है। इसलिए भक्ति इन भौतिक चीजों के ऊपर निर्भर नहीं है, भक्ति केवल भक्ति के ऊपर निर्भर है। तो हमने जहां तक भक्ति की है पिछले जन्म में, इस जन्म में हम वहां से आगे बढ़ेंगे, तो फिर हमारे पूर्व किए हुए कर्मों का असर क्या होता है हमारे भक्ति के ऊपर? केवल वो अड़चन पैदा कर सकते हैं, गतिरोधक बन सकते हैं। लेकिन अगर हमने तीव्रता से भक्ति की तो ये गतिरोधक भी नष्ट हो जाएंगे बहुत जल्दी से। लेकिन समस्या ये है कि अगर भक्त उतनी तीव्रता से भक्ति नहीं करेगा तो उसकी भक्ति की अग्नि इतनी प्रज्वलित नहीं जलेगी जिससे कि उसके पूर्व जो किए हुए कर्मों का जो बोझ है वो जल सके। इसलिए वो पूर्व कर्म जो है उसके लिए बोझ बन जाते हैं, उसको भक्ति मार्ग में गतिरोधक बन जाते हैं उसके लिए, और उसको नीचे खींचते हैं। जैसे समझ लीजिए कि पिछले जन्म की बात क्यों, इस जन्म की बात भी, किसी के पास कोई बुरी आदतें थी और वो भक्ति में आ गया, बुरी आदतें छूट गई, लेकिन अगर उसने अच्छी तरह से भक्ति नहीं की, तीव्रता से नियमों का पालन नहीं किया, साधना वगैरह नहीं किया, तो फिर से वो फिसल जाएगा, अपनी पुरानी आदतों में चले जाएगा। और वही पुरानी आदतें उसके पूर्व किए हुए कर्म वो अड़चन बन जाएंगे। अड़चन क्यों बन रही है? क्योंकि वो अग्नि इतने प्रज्वलित रूप से जल नहीं रही है। दूसरे शब्दों में, अगर हम बहुत ही हृदय से भक्ति करेंगे तो भक्ति इतनी शक्तिशाली है कि एक क्षण में सारे पूर्व कर्म को नष्ट कर सकती है। इसलिए हमें इसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए।
हरे कृष्ण। 25th टेक्स्ट में लवंते ब्रह्म निर्वाणम सर्वभूत हिते रताः, मतलब जो कल्याणकारी काम करते हैं उनको ही मुक्ति मिलती है, तो मुक्ति के लिए कल्याणकारी काम करना ही अवश्य है।
अगर हम कल्याण का सही अर्थ समझ लें, जैसे कि पहले प्रवचन में चर्चा हुई थी, तो फिर हाँ ये आवश्यक है। परंतु ऐसे कई लोग भी होते हैं जो केवल अपने उद्धार के लिए, अपनी मुक्ति के लिए साधना करते हैं, उनको भी मुक्ति मिल जाती है। लेकिन प्रहलाद कहते हैं मैं ऐसा नहीं हूं, मुझे केवल अपनी परवाह नहीं है, मैं दूसरों की परवाह भी करना चाहता हूं। परार्थ निष्ठा, दूसरों के हित के लिए मैं बहुत इच्छुक हूं। जहां तक मेरा सवाल है, मैं मौन व्रत धारण करके इधर उधर घूमना नहीं चाहता, अकेले हिमालय में जाकर बैठना नहीं चाहता। मौनम चरंति विजने न परार्थ निष्ठा, प्रहलाद कहते हैं मुझे ऐसे मौन व्रत धारण करके अकेले सुनसान जगह में घूमना फिरना मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे ये कृष्ण भक्ति सबको सुनाना है, सबको देना है। भक्ति मार्ग में भी दो तरह के भक्त हो सकते हैं, एक को भजनानंदी कहते हैं, दूसरे को गोष्ठानंदी कहते हैं। जो भजनानंदी होता है वो एक ही जगह में रहकर, धाम में रहकर भजन करता है, अपना उद्धार करा लेता है, दूसरों के बारे में इतना सोचता नहीं है। लेकिन जो गोष्ठानंदी होता है वो प्रचार करने जाता है सब जगह, जैसे प्रभुपाद गए थे वृंदावन छोड़ के अमेरिका गए थे, और ऐसे बुरी परिस्थिति में जहां वातावरण इतना बुरा है वहां रहकर उन्होंने हिप्पी लोगों को हैप्पी बनाया, तो वो श्रेष्ठ माने जाते हैं, और ये प्रहलाद की भावना है। तो जो श्रील प्रभुपाद जी ने किया वो प्रहलाद के पदचिन्हों में चलते हुए किया। इसलिए हमें भी दूसरों को बताना चाहिए जो हम सुन रहे हैं, जितना भी हमें मालूम है हम उतना तो बता सकते हैं, दो शब्द भगवान के बारे में कह सकते हैं, कोई लोग स्वीकार करेंगे कोई लोग नहीं करेंगे, लेकिन हमें बताने का प्रयास करना चाहिए, और ये हमारे भक्ति के लिए लाभदायक होगा। जितना हम दूसरों को जाके बताएंगे उतना ही ज्यादा भगवान की कृपा हमारे ऊपर आएगी और हम भक्ति में आगे प्रगति कर पाएंगे। इसलिए हालांकि अकेले बैठकर भी भक्ति की जा सकती है, आध्यात्मिक जीवन किया जा सकता है, परंतु भगवान को प्रसन्न करना है और भक्ति के सर्वोच्च शिखर तक पहुंचना है तो हमको ये बांटना चाहिए, और यही चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन है। खुद भी अमृत का स्वाद करो और दूसरों को भी स्वाद दिलाओ। ठीक है, तो बहुत धन्यवाद। अभी